पाठ चार, इसराइली जनता मिस्र में। याकूब के 12 पुत्र थे। पहला उठा बेटा रूबन था और सबसे छोटा बेन्यामीन। याकूब अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा यूसुफ को ज़्यादा प्यार करता था। उसने यूसुफ को एक सुंदर कुर्ता दिया था। यूसुफ के भाई उससे बैर करने लगे क्योंकि पिता उसे अधिक प्यार करता था। यूसुफ का स्वप्न। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसे सुनाया। उस समय से वे उससे और अधिक द्वेष रखने लगे। उसने उन्हें बताया था, मेरा स्वप्न सुनो, हम लोग एक साथ खेत पर पुले बांध रहे थे कि मेरा पुला खड़ा हो गया और तुम सब लोगों के पुले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पुले को प्रणाम करने लगे। ये सुनकर उसके भाई उससे बोले, क्या तुम हमारे राजा बनोगे और हम पर शासन करोगे? वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उसे भी अपने भाइयों को सुनाया। उसने कहा, सुनो, मैंने फिर एक स्वप्न देखा है और इस बार सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को बताया तो उसके पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे इस स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई सभी तुम्हारे आगे भूमि पर झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे? उसके भाई उससे ईर्ष्या करने रहे। यूसुफ मिस्र में। यूसुफ से भाइयों की ईर्ष्या बढ़ती रही। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, जो भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन बड़े भाई रूबन ने उससे मना किया। इसलिए उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। तब इसराइलियों का एक कारवां जो मिस्र जा रहा था वहां आया। भाइयों ने यूसुफ को कुएं से निकालकर उन लोगों को बेच दिया। फिर उन्होंने एक बकरा मारकर उसके खून में यूसुफ का कुर्ता डुबाया और अपने पिता याकूब को दिखाया। उन्होंने पिता से यह बताया कि यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा गया। व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र ले जाकर पोटीफर नामक फिराउन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष के हाथों बेच दिया। पोटीफर ने यूसुफ को अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। प्रभु ईश्वर यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई और उसने अपने साथ पाप करने के लिए उसे बाध्य किया, लेकिन यूसुफ ने मना किया। उसने अपने पति से यह कहा कि यूसुफ ने उसका अपमान किया है। पोटीफर ने क्रुद्ध होकर उसे पकड़वा कर बंदी गृह में डलवा दिया। स्वप्न की व्याख्या। प्रभु ने यूसुफ पर दया की और वह बंदी गृह के अध्यक्ष का कृपा पात्र बन गया। बंदी गृह के अध्यक्ष ने जेल के सब बंदियों पर यूसुफ को नियुक्त किया। वह जो कुछ करता था प्रभु उसमें उसे सफलता देता था। कुछ समय बाद राजा के साकी और रसोइये ने अपने स्वामी राजा के विरुद्ध अपराध किया। राजा ने उन्हें उसी बंदी गृह में डलवा दिया जहां यूसुफ बंदी था। एक बार उन दोनों ने एक एक स्वप्न देखा जिनका अपना अपना अर्थ था। यूसुफ ने इन स्वप्नों का अर्थ उनको बताया और ऐसा ही घटित हुआ। 2 साल बाद फिराउन ने भी एक स्वप्न देखा। वह नील नदी के किनारे खड़ा था। इतने में नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकली और कछार की घास चरने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन गायों के पास नील नदी के किनारे खड़ी हो गई। इसके बाद वे कुरूप दुबली पतली गायें उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गई। इतने में फिराउन की आंखें खुली। जब वह फिर से सोया तो उसने एक और स्वप्न देखा। एक ही डंठल में 7 अच्छी भरी बालें फूट निकली हैं। इनके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालें फूट निकली। पतली बालें उन 7 भरी पूरी बालों को खा गई। तब फिराउन की नींद टूटी और उसे मालूम हुआ कि यह एक स्वप्न था। प्रातःकाल उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मिस्र के सब जादूगरों और पंडितों को बुलाया। फिराउन ने उन्हें अपने स्वप्न कह सुनाए, परंतु उनमें कोई भी फिराउन को उनका अर्थ समझा न सका। यूसुफ मिस्र का प्रशासक। यूसुफ ने जो साकी के स्वप्न का अर्थ बताया था, उसने बंदी गृह से मोचित होकर अपना पुराना पद पुनः प्राप्त किया था। साकी ने यूसुफ के बारे में फिराउन से कहा। फिराउन ने यूसुफ को बुलवाया और स्वप्न समझाने को कहा। यूसुफ ने फिराउन से कहा, अब ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब सारे मिस्र देश में सुकाल रहेगा, परंतु इनके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तब लोग मिस्र देश का सुकाल भूल जाएंगे। यूसुफ ने यह भी कहा कि ईश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा और इसका सामना करने के लिए तैयार रहना है। इसलिए आने वाले अकाल के लिए अनाज नगरों में सुरक्षित करना है और इसके लिए एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करना है। यह परामर्श फिराउन और उसके सब पदाधिकारियों को अच्छा लगा। उसने यूसुफ को मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त कर दिया। यूसुफ ने आने वाले अकाल से बचने के लिए नगरों में अनाज इकट्ठा किया। इस बीच यूसुफ का विवाह हुआ और मनस्से और एफ्रेइस नामक 2 पुत्र हुए। 7 साल बाद अकाल पड़ने लगा। हर देश में अकाल था और सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए। यूसुफ ने सबको अनाज बेचा। इसराइल मिस्र में। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, इसलिए उसने अपने पुत्रों से कहा, वहां जाकर अपने लिए अनाज खरीद लाओ जिससे हमारे प्राण बच जाएं और हम मरे नहीं। इसलिए याकूब के पुत्र अनाज खरीदने मिस्र गए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन वे उन्हें नहीं पहचान सके। यूसुफ ने उन्हें अनाज दिया, लेकिन तरह तरह की परीक्षाएं भी ली। आखिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? यह सुनकर वे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यूसुफ उन्हें बंदीगृह में डलवा देंगे। लेकिन यूसुफ ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम इसलिए न तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा। यूसुफ ने अपने पिता को मिस्र ले आने को कहा। भाइयों ने याकूब को सारी बातें सुनाई। सब कुछ सुनकर याकूब प्रसन्न हुआ और अपनी समस्त संपत्ति लेकर मिस्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में याकूब से कहा, मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊंगा। मिस्र पहुंचे याकूब को यूसुफ ने आनंद के साथ स्वीकार किया। यूसुफ ने फिराउन की आज्ञा के अनुसार पिता और भाइयों को मिस्र देश के सर्वोत्तम भाग रामसेस प्रांत में बसा दिया। याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष जीवित रहा। वहां इसराइली लोग फलते फूलते रहे। दास के रूप में मिस्र आया यूसुफ प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर मिस्र का अधिकारी बन गया। आखिर उसने अपने पिता और भाइयों का संरक्षण किया। पुराने विधान के यूसुफ की कहानी बहुत ही आकर्षक है। यूसुफ के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों के अनुभव चमत्कार पूर्ण होते हैं। इसराइल को मिस्र तक पहुंचने के लिए ईश्वर ने यूसुफ द्वारा मार्ग सजवाया, यही है मुक्ति योजना में यूसुफ की सहभागिता। 12 गोत्र और प्रेरित गण। याकूब के पुत्र ही इसराइल के 12 गोत्र बने। इसराइल के इतिहास में 12 गोत्रों को बहुत महत्व दिया गया है। पुराने विधान में ईश्वर की जनता का पथ प्रदर्शन गोत्र पिताओं और उनके अनुयायियों ने किया। इसी प्रकार नए विधान में 12 प्रेरित और उनके उत्तराधिकारी ईश्वर की जनता यानी कलीसिया का मार्गदर्शन करते हैं। पुराने विधान की पूर्ति नए विधान में हमें देखते हैं। हमें जो पुराने विधान का इतिहास पढ़ते हैं, ईश्वर की मुक्ति योजना अच्छी तरह समझनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आज भी ईश्वर की योजनाएं हमारे द्वारा ही संपन्न होती है। हमें इसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा संरक्षण करते हैं। विश्वस्तता के साथ जीवन बिताने के लिए हमें सहायता दीजिए। हम गाएं। याकूब के सुत यूसुफ का जीवन यातना पूरित होते हुए भी पहुंचाया उसे ईश्वर पालन, मिस्र देश के ऊंचे स्थान में। क्षाम पीड़ित इसराइल जन सहाय रहित याकूब ने कहा, बच्चों जाओ मिस्र देश में, गेहूं लेके वापस आओ। लाए पिता को मिस्र देश, देखा पिता ने प्रिय सुद को, तात पुत्रों सह बहु वर्षों तक गोत्र प्रियंकर होकर बिताया।